दीक्षांत के दोनों हाथ माही की पतली सी कमर को जकड़े हुए थे। उसका चेहरा माही की गर्दन में छुपा हुआ था। वहीं माही शर्म से लाल हो चुके चेहरे के साथ हैरानी से अब जानवी की तरफ देख रही थी। जानवी भी उसी की तरफ देख रही थी। माही ने घबराहट से सूखे होठों पर जीभ फेरकर धीरे से कहा, सर आप ठीक है ना? उसकी आवाज़ सुनकर जैसे दीक्षांत होश में आया हो, वो जल्दी से हड़बड़ाकर माही से अलग हो गया और फिर उसने गर्दन घुमाकर जानवी की तरफ देखा। जानवी की नज़रें भी झुक गई थीं। ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था। जानवी ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, आप यहाँ बैठें। इतना बोलकर जानवी तेज़ कदमों से कमरे से बाहर चली गई। तो वहीं माही ने मन ही मन कहा, मुझे टेबल के पास अकेला छोड़कर क्यों चली गई हो जानवी? पर अफसोस, वो जानवी को जाने से रोक नहीं पाई। अब कमरे में शांति पसरी हुई थी। माही ने हिम्मत करके नज़रें उठाईं और दीक्षांत के चेहरे को देखा। दीक्षांत ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। माही ने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है ना सर? दीक्षांत ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर माही का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर माही के चेहरे पर एक बार फिर खौफ आ गया। दीक्षांत ने उसे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया और फिर खुद उसके बगल में बैठे हुए बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं, कहां से शुरू करूं, और अगर कह भी दिया तो कहीं तुम्हारा रिएक्शन कुछ ज़्यादा बुरा ना हो, बस ये सोचकर घबरा रहा हूं। माही के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी कि दीक्षांत उससे घबरा रहा है। उसने अपने डर से सूखे गले को तर करते हुए कहा, आप सच में घबरा रहे हैं क्या? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने कुछ गलत किया है? दीक्षांत ने किसी छोटे बच्चों की तरह तीन चार बार नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया था। एक्चुअली मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है और साथ में तुमसे एक प्रॉमिस भी चाहिए। माही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आपको सच में मुझसे माफ़ी मांगनी है? वहीं प्रॉमिस का नाम सुनकर माही का दिल एक बार फिर डर से भर चुका था। ऑलरेडी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट याद था दीक्षांत का, उसे अब उसके अलावा नई कैद नहीं चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल उसने प्रॉमिस करने के लिए मना भी नहीं किया। वो गौर से दीक्षांत के चेहरे को देख रही थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि दीक्षांत सच में घबराया हुआ है। दीक्षांत ने उसके मुलायम हाथ को अपने हाथ में और भी ज़्यादा टाइट पकड़े हुए कहा, सॉरी उसके लिए जो मैंने अब तक तुम्हारे साथ किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैं मन से ख़त्म करता हूँ। तुम्हें उसकी कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बदले छोटा सा प्रॉमिस चाहिए तुमसे। माही बुरी तरह उलझन में आ चुकी थी। उसकी तरफ से जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी आ रही थी, और माही के लिए जैसे सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था। दीक्षांत ने उसकी आंखों में उम्मीद से देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पूरी ज़िंदगी रावत मेंशन से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, तुम वहाँ काम करना और यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ रहना, कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। माही ने कुछ बोलना चाहा तो दीक्षांत ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी फैमिली का डर है तो मैं उनसे बात करूंगा। फैमिली का नाम सुनकर माही की नज़रें झुक गईं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मेरी फैमिली से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर दीक्षांत हैरान रह गया। उसने जल्दी से उसके दूसरे हाथ को भी अपने हाथ में पकड़े हुए कहा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग नहीं समझा सकता हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम पूरी ज़िंदगी मेरी आँखों के सामने रहो। प्यार में अक्सर लोग सबसे पहले फिज़िकल अट्रैक्ट होते हैं, और वो मैं नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम यहाँ से चली जाओगी ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान कर रहा है। माही ने अपने हाथ दीक्षांत के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, आपको हो क्या गया है सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद आप अपने सारे स्टेटमेंट बदल दो और फिर से मुझे वैसी ही ज़िंदगी जीनी पड़े जैसी मैं अब तक जीती आ रही हूँ। दीक्षांत ने जल्दी से दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए कहा, ओके, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुमसे कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, और तुम चाहो तो मैं जेल भी जा सकता हूँ इसके लिए। वैसे भी कम ही जेल होगी, 5-6 महीने की, उसके बाद मुझे बेल मिल जाएगी। क्या उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी? माही जल्दी से सोफे से उठते हुए बोली, सर आप कौन सा नशा करके आए हैं कि कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? दीक्षांत ने आंखें बंद करते हुए अपने मन ही मन कहा, बुद्धू पहले बता तो सही कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। उसने जल्दी से सोफे से उठकर माही के सामने जाते हुए कहा, देखो तुम ऐसे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली मैं और अमर बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये ढूंढने के लिए कि आखिर तुमने हमारी कंपनी के साथ वो सब क्यों किया। और उसके बाद हमें पता चला कि जिस कंपनी में तुम काम करती थी उस कंपनी का ओनर हमारा पुराना दुश्मन है, यानी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और हमें लगा तुमने पैसों के लालच में ये सब किया है। और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके लिए।
अब जाकर माही को दीक्षांत की पूरी बात समझ आई थी। माही ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा,
मुझे अपनी जॉब नहीं गंवानी थी। बहुत मुश्किल से मुझे वो जॉब मिली थी और साथ में मेरे पापा ने भी कहा कि जो उस कंपनी का ओनर बोलता है वो मुझे करना चाहिए, बस इसी वजह से। बाकी मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने के लिए मुझे एक जॉब ज़रूर चाहिए थी। और मैं कभी जानवी के पास नहीं आना चाहती थी, पर मेरी वो इकलौती दोस्त है। उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मेरे अलावा उसका कोई दोस्त है। दीक्षांत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं, आई एम सॉरी। माही ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, आपकी सॉरी बोलने से क्या होता है? क्या वो सब पास्ट में जाकर आप चेंज कर सकते हो जो आपने किया है? दीक्षांत ने शर्मिंदगी से नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे कभी सही नहीं कर सकता। जैसे तुम्हें अपनी दोस्त बहुत प्यारी है, मुझे भी अपना दोस्त बहुत प्यारा है। मेरी उसके अलावा कोई फैमिली नहीं है और बस इसलिए जो बात उस पर आती है तो मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। अब तुम जितनी बार सॉरी बुलवाना चाहती हो मैं बोल दूंगा। बोलते वक्त दीक्षांत के गले में चुभन महसूस हो रही थी। सच में वो कितना बेबस महसूस कर रहा था इस वक्त खुद को, क्योंकि जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया था वो कभी दीक्षांत से ये नहीं करवाना चाहता था। अमर खुद दीक्षांत से ज्यादा समझदार था और उसे हर बार रोक भी रहा था, और दीक्षांत को जो लड़की पसंद आई वो भी उसके साइड नहीं है। इस अकेलेपन में वो सिवाय खुद को दोष देने के कुछ नहीं कर पा रहा था। माही ने उसकी मनोदशा समझते हुए धीरे से कहा, ठीक है सर, ये सब मैं समझ गई, लेकिन इस प्रॉमिस का क्या मतलब हुआ कि आप हमेशा मुझे रावत मेंशन में ही रखना चाहते हैं? दीक्षांत ने जल्दी से कहा, बताया ना, मेरा दिल भारी हो जाता है ये सोचकर कि तुम चली जाओगी तो मैं परेशान किसको करूंगा। माही ने कमर पर हाथ रखते हुए आंखें छोटी करके दीक्षांत को घूरा। तब जाकर दीक्षांत को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोला है। वो जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन देखो ना, सबके पार्टनर हैं उनके पास, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे तुम्हारी पार्टनरशिप चाहिए।
माही ने आज तक बहुत सारे प्रपोज देखे थे। एक लड़का एक लड़की को किस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कैसे उसे प्रपोज करता है, लेकिन दीक्षांत चौंका रहा था, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। माही ने हल्के गुस्से में कहा, अनबिलीवेबल सर, आपको ये नहीं पता कि किसी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स कैसे रखी जाती हैं? और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे पसंद कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता है, मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड ने भी चीट कर दिया था, तो मैं आप जैसे बड़े आदमी को कैसे पसंद आ सकती हूँ? और वो भी तब जब मैंने आपकी कंपनी में इतना नुकसान भी करवाया है, मेरी वजह से आपकी इतनी बड़ी डील छूट गई। अगर मैं उस टेंडर की इनकम रिवील नहीं करती तो वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में होता, ना कि मेरी कंपनी के हाथ में। दीक्षांत ने माही की तरफ दो कदम बढ़ाते हुए कहा, जो हो गया उस पर मिट्टी डालो ना, मुझे वो सब याद भी नहीं करना है। और हाँ, मुझे नहीं पता है किसी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुझे चीट कर दिया था, वैसे ही मुझे आज तक 100 लड़कियों ने प्रपोज कर दिया होगा, बट मैं कभी उनको पलटकर जवाब तक नहीं दे पाया। और ऐसी बात नहीं थी कि वो लड़कियां अच्छी नहीं थीं या मुझे उनमें कोई कमी दिख रही थी। क्या मुझे ब्रह्मचारी बनना था? ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद मैं कभी पलटकर उनसे कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसी चीज़ों के लिए कैसे सेंटेंस फॉर्मेट करने चाहिए ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो। पर अब तुम्हें बोलने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो भी मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही दीक्षांत ने एक बार फिर माही का हाथ पकड़ लिया था। माही ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सर आप बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? तभी दरवाजे से जानवी अंदर आई, जिसके हाथ में कॉफी की ट्रे थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारा साथ चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हाथ पकड़ना जरूरी है।